समझना, विसिंग चतुर्दशी रामनवमी इन सब का व्रत सब लोग करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि विधवाओं को नहीं करना चाहिए, गलत बात। लड़की भी करेगी, लड़का भी करेगा, सधवा भी करेगी, विधवा हाँ सधवा को नहीं करना चाहिए कहते हैं, किंतु ये गलत बात। एकादशी का ये उद्यापन मत कराना कोई, घर में आई हुई लक्ष्मी को विदा मत करना, कभी नहीं उद्यापन करना। उद्यापन करने से कुछ अपराध होता है। स्मार्ट ब्राह्मण लोग अपने पेट पालन के लिए ऐसा कराते हैं। हमारे घर में लक्ष्मी जी भगवान की पत्नी आई हैं और उनको हम विदा करने, अब जाओ, अब हमसे नहीं होता है तुम्हारी सेवा, तो अपने वृद्ध माता पिता को भी ऐसे तो आजकल हो रहा है ऐसे, इसलिए उद्यापन इत्यादि मत करना। हमारे पास में बहुत लोग, हम नहीं जाते। इसलिए प्रहलाद महाराज जी का ऐसा हुआ, बचपन से ही महाभागवत हुए और उनको सुयोग मिला नारद जी जैसे गुरु मिलने का। सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ में 12 या 16 वर्ष तक थे और उस समय में 16 वर्ष तक उन्होंने व्यास की हरि कथाओं को श्रवण किया और तब देखो ये कैसे बने। और इनको 7,000 वर्ष का समय मिला था माता के गर्भ में से, एक दो वर्ष नहीं, 7,000 वर्ष। और उन्होंने नारद जी से, नारद जी के आश्रम में उनकी मैया रही और नारद जी के कुटी की सेवा करने से लिप पोत देना और वहां पर सेवा करना, फूल इत्यादि ला देना। नारद जी बोले जिसे तुम वर मांगो, कहे हमारा बेटा अभी नहीं हो, हमारा पति गया है तपस्या करने के लिए, वो जब तक नहीं लौटा था तब तक इसका जन्म नहीं हो, नहीं तो देवता लोग उसे मार डालेंगे। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, जब तुम चाहेगी तभी तुम्हारा पुत्र होगा, ऐसे नहीं होगा। बस 7,000 वर्ष तक नारद जी के विभिन्न तत्व सब सुने। इसलिए जन्म के साथ ही साथ में महाभागवत हुए। महाभागवत का लक्षण है, जितना भी क्लेश विपत्ति आए उसके लिए दूसरों को दोष नहीं देता। देखो ना, हिरण्यकश्यपु पीस दिया, आग में जलाया, मारा काटा, जो नहीं करना चाहिए सब कुछ किया, किंतु उन्होंने कभी नहीं कहा कि पिताजी हमारे प्रति मैं तो निर्दोष हूं, ऐसा क्यों करे, कहा कभी नहीं कहा। उसको मस्तक ऐसा करके से उसे दे दिया। भगवत भक्त ऐसे ही होते हैं, कभी किसी से उलाहना नहीं देते कि उसने हमारी सास ने ऐसा किया और सास भी ऐसा उलाहना नहीं देगी कि उसने हमारे बहू ने ऐसा किया। लड़का दोष पिता को नहीं देगा, पिता उसको दोष नहीं देगा, किसी को कोई दोष नहीं देगा। अपने कर्मों का फल या भगवान की इच्छा मान करके उसे भोग लेगा, उसके प्रति शत्रुता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो चित्त चंचल होने से भगवान का नहीं भजन। इसलिए प्रहलाद महाराज जी का यदि भजन करना है तो प्रहलाद जी का अनुसरण करो। प्रहलाद जी ने जैसे भजन किया वैसे भजन करो। सर्वत्र ही भगवान को दर्शन करते, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं, मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे नहीं, अपने आराध्य देव को सब समय सर्वत्र देखते थे और उस प्रभु में समस्त प्राणियों को देखते थे। ये प्रभु के सेवक हैं, हम लोग भी ऐसा ही देखेंगे, ये सब प्रभु के सेवक हैं, सेविका है। इस प्रकार से जो देखेगा वो भजन कर सकेगा और प्रहलाद महाराज जी जैसा हो सकेगा। इसके बाद में उसके पिताजी ने उससे बहुत शत्रुता की, किंतु उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। पिताजी ने कहा, तुमने क्या अच्छा समझा, निर्धड़क होकर के, निर्धर होकर के बतलाया, प्रभु का भजन करना ही सर्वोत्तम पाठ है, इससे बढ़कर के और कोई मैं शिक्षा नहीं जानता, एकदम धड़ल। फिर भी उनको मारना चाहा, किंतु मार नहीं सका। अरे तुम्हारी कौन रक्षा करने वाला है, कौन रक्षा करता है, तो प्रभु हमारी रक्षा कहाँ है, वो सर्वत्र है, सब में है, खड़क खम सब में है। तो मैं क्या नहीं देखता दुष्ट, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, संडामर्थ तुम्हारे गुरु नहीं है, तुम्हारा गुरु कौन है, कौन तुमको सिखलाया। तू तो जानते हैं जी हमारे गुरु नारद जी, उन्होंने सिखलाया। हमारे गुरु से संडामर्थ से तुम अधिक समझ गया, उनकी बात और मेरी बात नहीं मानता है, बहुत तरह से लांछन लगा। कहाँ है तुम्हारा प्रभु, देखें तो तलवार लेकर के दौड़ा और गदा लेकर के मारने, अभी तुमको मारता हूं। और जो ही दौड़ा से ही बस झट नृसिंह जी प्रकट हुए और किस प्रकार से उन्होंने रक्षा की और किस प्रकार से उसको मारा। आप लोग तो दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, किसी पशु पक्षी प्राणी मनुष्य कीट गंधर्व देवता से नहीं मरेगा, ब्रह्मा के सृष्टि की हुए प्राणियों से नहीं मरेगा, दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं मरेगा, ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, घर के भीतर नहीं मरेगा, बाहर नहीं मरेगा, और किसी वर्ष में नहीं मरेगा, इससे अधिक क्या, वर्ष में मरेगा ही नहीं, बारह महीने में नहीं मरेगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, सब प्रकार के परमाणु। प्रभु ने अच्छा तुम्हारी तीन ही तक बुद्धि है, तो दिन में रात में नहीं, शाम ऊपर नहीं, नीचे नहीं, जंग पकड़, घर के भीतर नहीं, बाहर नहीं, दैनिक महीने में नहीं, बारह महीने से अतिरिक्त जो मलमास लगता है, पुरुषोत्तम महीना भी जो ऐसा पुरुषोत्तम महीने के अंदर, इसी तरह से उसकी मांगी हुई बातों की भी रक्षा हो गई और एक सेकंड में नहीं लगा उसको मारते। नृसिंह देव असुर बालकों को कैसे शिक्षा दी और सबको बना दिया भगवत भक्त। भागवत का पाठ का यही तात्पर्य है, हम लोग दक्षिणा नहीं चाहते, रुक्मिणी का विवाह कर करके, और आप लोगों से ये नहीं कहेंगे जैसे आप लोग उपहार लगे, हम लोगों को कोई चीज की जरूरत नहीं, हम आपको जो उपहार देंगे उसको ग्रहण करेंगे, आप लोग पाकर जन्म, कल उनका जन्म होगा, कृष्ण का जन्म होगा, नंद बाबा भी रहे यशोदा जी, उसके लिए मैं आपसे नहीं कहेंगे ये सब लाइए, वो सब क्यों हमको जरूरत, तब हाँ भक्त लोग करेंगे। तो हम लोग कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, हम यही चाहते हैं प्रहलाद महाराज ने असुर बालकों को जो दिया और असुर बालकों ने उसे ग्रहण किया और भगवत भजन आरंभ कर दिया, हम इसी के लिए हम लोग आए। यदि आप लोगों में से लोगों ने ग्रहण किया तो हम समझेंगे कि हमारी बहुत कुछ दक्षिणा नहीं, और ये यदि नहीं होगा तो उस दक्षिणा से हम लोग संतुष्ट हैं, हमें उन सबकी जरूरत है। जैसे सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज जी ने दक्षिणा देकर के विदा किया कि नहीं दिया, क्या दक्षिणा उनको दिया, राज्यपाठ दे दिए ना, क्या सोने की चीजें अलंकार इत्यादि भागवत दान किया वो दिया, उनको पता ही नहीं है। उनको उपदेश देकर के कहा जैसे रहो, भगवान में चित्त को लगाओ, तक आकर के भी सब स्पर्श नहीं कर सकेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी नहीं, ऐसा कर दिया। और निर्भीक होकर के बैठ गए, अपनी मैया को सुनाने लगे हरि कथा। मैया ने पूछा जो तुमने जो सुना, मेरी स्त्री बहुत थोड़ी सी बुद्धि, मैं समझ नहीं सकी सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, ये सब कहा, तुम अब इसी समय में हमको कुछ कहो। अब थोड़ा सा समय था, उसी में उन्होंने श्रीमद् भागवत का सार, गोपियों का प्रेम, भजन का सातम में ये कैसे कैसे भजन होता है, ये सब चीजों को सुना करके एक सेकंड के अंदर में माता जी को भी कृष्ण के प्रिया के रूप में बदल दिया, ऐसा भजन हुआ। ये भागवत का तो प्रहलाद महाराज जी ने ऐसी सुंदर कथा उनको सुनाई, जितने असुर बालक लोग थे बस सब लोग ये भागवत पाठ का साथ करें। इसलिए आप लोग भी इनके चरित्र को श्रवण करेंगे और खूब हृदय से उसे ग्रहण करके आज से ही भगवत भजन जो जो कर रहे हैं पहले से तो ठीक है, और नहीं तो आज से ही। साधारण लोग कहते हैं आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, क्या खटखट में पड़े हुए हो, समय पड़ा है बरसों, अरे आज से नहीं कल से, लड़कों की शादी कर ले, इसके बाद में और कर ले, नाती आ जाएगा वो भी बड़ा हो जाए उसको भी खिला ले, इसके बाद नाती के लिए शादी कर, और इसके बाद में जब वृद्ध हो जाएंगे चल फिर नहीं सकेंगे उस समय भजन करेंगे। और भक्त लोग कहते हैं काल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में परलय होएगी, बहुत करो, कब से करेगा। इसलिए भागवत श्रवण करके सभी लोग भजन करना आरंभ, सबके हाथ में माला देखना चाहते। यहां तो हम लोग 9 दिन भागवत कर रहे हैं, इसमें प्रारंभ से कर रहे हैं, किंतु यहां पर भागवत का सार रोज ही होता है सवेरे शाम। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं होती हैं जो जगत में कहीं नहीं मिलेंगी। इसलिए आप लोग ये पाठ होने के बाद ही 9 दिन के बाद भी शाम को 6 बजे से 7 बजे अभी हो रहा है सवेरे, उसमें कथाएं आएंगी, इससे भी बड़ी बड़ी सुंदर। इसमें तो हम लोग बाइंडिंग में है, ये करना है हमको, ये कहना है उस समय में, किंतु बाइंडिंग नहीं रहेगी। भगवान की अत्यंत सुंदर रसमयी कथाओं का परिवेशन उस समय में जीवन सार्थक हो जाए। इसलिए हम लोगों को प्रहलाद महाराज जी से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे गुरु जी के गुरु जी थे, उन्होंने 108 बार की मद्भागवत की ये प्रहलाद महाराज जी का उपाख्यान पाठ किया, और कहते थे यदि प्रहलाद महाराज जी का आदर्श कोई नहीं लेगा तो भजन नहीं कर। इसलिए ब्रह्मचारी उन लोगों से विशेष करके ये, और जो भजन करने वाले यहां पर अशांत चित्त मत है, चित्त को चंचल न करें, एकांतिक चित्त से भगवान का भजन करते हुए भगवान को चैतन्य महाप्रभु के आदर्श के अनुसार पाए। परस्पर किसी भी बात के लिए विरोध न हो। वो जो भी कहता जैसे ये हमको क्या चत भाई ठीक, जो जो हमारे यहाँ सुनने आते हैं वो लोग भी यदि कामना होगी तो क्रोध होगा, क्रोध होगा लड़ाई होगी, इस सबको तो हटा देना है एकदम, कहने से नहीं हो जाएगा। किंतु हम ऐसा सोचें ये गुरु जी का आदेश जो हमको लड़ना है, भागवत का आदेश, तो ये सब जीवन चरित्र बनेंगे और भजन में मन लगेगा। इसीलिए हमारा मन नहीं लगता क्योंकि इसी में हम लड़ जाते हैं। अब हम लोग श्रीमद् भागवत प्रारंभ करेंगे, बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे, विशेष करके ये उपाख्यान भागवत का एक लक्षण है जिसमें प्रहलाद महाराज जी का चरित्र वर्णन किया गया है, और पीछे वाला वृत्रासुर का भी, वो भी साधारण नहीं है, कुछ भी साधारण है, सभी असाधारण तत्व है। इसलिए इसको ग्रहण करने की लालसा से आप लोग सब वंचाकल्प भगवान का भजन करना ये कर्तव्य ही कुछ नहीं रह गया। अभी मैंने किसी व्यक्ति से सुना कि बिहार के कोई प्रधान मुख्यमंत्री है लालू प्रसाद, उन्होंने कहा भाई ये भक्त लोग और ब्राह्मण लोग कान में जनेऊ चढ़ाते हैं, भाई बिना कान में चढ़ाए वो लोग कान में जनेऊ चढ़ा करके तो साफ करते हैं, और हम लोग तो नहीं करते हैं, कान पर नहीं चाहते, हमको भी पेशाब हो जाता है। तो ये जनेऊ चढ़ाने की क्या जरूरत है, भगवान का भजन करने का क्या जरूरत है। बहुत से लोग हैं, कुछ लोग थोड़े लोग भगवान का भजन करते हैं, और अधिकांश लोग 99% भगवान का भजन नहीं करता है, तो उनको भोजन नहीं मिलता है। वो लोग भी जीवन धारण करते हैं तो भगवान का भजन करने की क्या जरूरत है। प्रहलाद महाराज ने ही सबका उत्तर दिया है, कहीं तो पेशाब तो घोड़े और गधे और सुअर भी करते हैं, तो तुमने पेशाब बिना कान के ऊपर में चढ़ाए हुए कर लिया थे, ये कौन सी बड़ी भारी बात कर रही, गधे और सुअर नहीं करते, ऐसा कोई प्राणी है जो नहीं करता है, तो तू इसीलिए पैदा हुआ गधे और घोड़ों का काम करने के लिए। ब्राह्मण वह है, भक्त वो है जो ये जानते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं अक्षर हूं, अनादि हूं, नित्य हूं, अजर हूं, अमर हूं। आजकल ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं है संसार, न गवर्नमेंट इस शिक्षाओं की जरूरत समझती है और न साधारण आदमी, इसलिए आज ये दुर्दशा है। आज यदि हम लोग वैदिक रीति के अनुसार में चलने लगे, प्रहलाद नारायण जी की शिक्षाओं को अनुसरण करें, तो हम समझेंगे कि हम अजर अमर आत्मा है, हम मरते नहीं है, हम इन चीजों के द्वारा सुखी नहीं रह सकते। आज तक कोई व्यक्ति खाने से और पहनने से सुखी हो सका है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। इसलिए इनके द्वारा हम सुखी नहीं हो सकते हैं। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं भक्तों के चरणों में अभिषिक्त नहीं होने तक हम सुखी नहीं हो सकते। भक्तों के चरणों में अभिषिक्त होने का तात्पर्य क्या है? उनके मुख से जो हरि कथाएं निकलती हैं, उसके द्वारा कोई यदि व्यक्ति स्नान कर ले, उसको आचरण कर ले, सहज ही में वो सुखी और शांति हो सकता है। ऐसा कौन प्राणी है? प्रहलाद महाराज जी पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्राणी है जो दुख दूर करने के लिए चेष्टा नहीं करता? कोई भी दुख नहीं चाहता है, कोई भी प्राणी, किंतु ऐसा कोई प्राणी है जिसको दुख नहीं आया हो? मनुष्य की बात छोड़ दो, राम आए, अराज्य छोड़ करके जाना पड़ा, पत्नी को भी रावण ने हरण कर दिया, अंत में अपनी प्यारी पत्नी को भी वनवास देना पड़ा, प्रहलाद महाराज को इतने कष्ट हुए, अभी मीराबाई अभी कुछ दिन पहले कितना कष्ट हुआ, अभी जो जो भजन करते हैं उनको देखेंगे पूछेंगे जो घर वाले और बाहर वाले समाज वाले उनको कितना कष्ट देने की चेष्टा करते हैं। तो कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिनको बिना बुलाए अपने आप दुख नहीं आ जाता। ऐसे ही सुख किसी को होगा तो बिना बुलाए वो सुख भी आएगा। कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता फिर भी वृद्धावस्था आती है। कोई को दुख आता क्यों? उसी तरह से सुख भी होगा तो अपने आप आएगा। इसलिए मनु को उद्विग हो करके, मन को उद्वेग दे करके दुख को दूर करने की चेष्टा नहीं मत लगा रहो, बल्कि सुख के लिए भी चेष्टा न करके, दुख के लिए भी चेष्टा न करके, केवल भगवान का हमको स्मरण करना है। और जितने भी कर्तव्य जगत में है, सबसे प्रधान और एकमात्र कर्तव्य है अपने को जान करके, भगवान को जान करके उनका भजन करना। ये यदि हुआ तो वैष्णव के चरणों में अभिषिक्त होकर के हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने असुर बालकों को, बच्चों को बुलाया, छोटे छोटे 5 वर्ष के, 6 वर्ष के, 10 वर्ष के बच्चों को बुलाया और उनको शिक्षा देने लगे। देखो भाई, बचपन से ही भगवान का भजन करो, केवल मात्र बचपन से लड़के ही भजन करेंगे, लड़कियां भजन करेंगे कि नहीं? यदि लड़के पढ़ते हैं तो लड़कियां भी पढ़ती हैं। आजकल तो सबको पढ़ने का है, सभी लोग पढ़ते हैं। यदि पुरुष नौकरी करता है तो स्त्री भी नौकरी करती है। जीवात्मा की दृष्टि से सभी एक, इसलिए प्रभु को जो परम पिता है उनका भजन करने में भी स्त्री पुरुष वृद्ध जितने भी हैं, पशु पक्षी प्राणी सिंह सबको ही भगवान के भजन करने में अधिकार है। और यही परम कर्तव्य इसी को भूलने की वजह से आए, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। कोई कहता है मैं पढ़ लिख लूं तो भजन करूं, प्रहलाद महाराज ने इसका उत्तर दिया, कोई गारंटी है जैसे तू पढ़ लिख करके 20 वर्ष के बाद में भजन करेगा ही, और यदि इसी बीच में मृत्यु आ गई मर गया तो? हम लोग दिल्ली जा रहे थे अभी कुछ दिन पहले, कार से जा रहे थे, देखा क्या, दो ट्रक उल्टे हुए और एक कार उनके भीतर में चली गई है, पीस गई है। उसमें अभी सत्य विवाही वर और उसकी विवाहिता स्त्री, वर का भाई छोटा 5 वर्ष का, उसकी बहन छोटी सी, और बालक सब बैठे हुए, और एकदम पीस करके न जाने क्या हो गया, उनका रक्त और मांस सब एक, देख करके दिल दहल। ऐसे एक घटना ही नहीं, आजकल हम घर से निकलते हैं ये भरोसा नहीं होता है कि हम लौट करके ही घर में पहुंचेंगे। मैं तो यहाँ तक कि ये पार्क में टहलने जाता हूँ तो रास्ता ये पार करके मैं सुल्तान जी देखें लौटता हूँ कि नहीं, किंतु हम लोग तैयार रहते हैं, सब समय तैयार रहते हैं, कमर में गमछा बांध करके तैयार रहते हैं, तैयार हैं सब समय। उसी तरह से प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं तू बड़ा हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा तो भी तुम्हारी मृत्यु होगी, कोई गारंटी नहीं भाई। अभी तो खाने खेलने का समय है, खाने खेलने का तो समय है, किंतु देखो वो कहते हैं बच्चे मैं अभी पढ़ लिख लू, इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, विवाह शादी करूंगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, और वो जब बड़े होंगे उनकी शादी उदी करके हम सब, जब वृद्धावस्था आएगी तो ये संसार से रिटायर्ड होकर के तब भगवान का भजन। प्रहलाद महाराज ने कहा तेरी कमर टेढ़ी हो जाएगी और तू सीधा बैठ भी नहीं सकेगा तो क्या तू भजन करेगा? इसलिए जब तक कभी शक्ति है तब तक भजन कर लो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो वृद्ध हो, भजन कर लो, और नहीं तो पीछे पछताओगे। एक तो मृत्यु न जाने कब हो जाए, और मरने के पहले यदि पैरालिसिस हो जाए, आधा अंग यदि शून्य हो जाए तो क्या होगा? यदि पागल हो गया तो? आजकल कोई ऐसी बीमारी चली है नई नई सब, वो आदमी एकदम मुख से बोलना बंद हो जाता है, हाथ पैर शून्य हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, कुछ दिनों के बाद में मर जाता है। नए नए अनुसंधान चल रहे हैं औषधियों के, और नए नए रोग प्रभु भी देखेंगे तुम क्या कर रहा है। तो इसलिए कब तू मर जाएगा कोई ठीक नहीं, इसलिए बचपन से भजन करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आजकल लोग साधारण कर्तव्य के लिए, झूठ बोलने के लिए, चोरी करने के लिए या और दूसरे कर्तव्य के लिए, ये जो परम कर्तव्य है इसको भूल जाते हैं। मैंने किसी इंजीनियर को, हमने यहीं के और कुछ और लोगों को हमने निमंत्रण भिजवाया हरि कथा में आ जाना, नहीं हो तो सवेरे एक घंटा, आध घंटा शाम को, नहीं तो दिन में एक बार। कहते कि फुर्सत नहीं है, क्या कर रहे हैं। अरे कितने लोगों का, कितने समाज का हमारे ऊपर में, इधर में वहां जाना है, अभी अध्यक्ष हमको किसी ने बना दिया है, किसी ने सेक्रेटरी बना दिया है, उस काम में हमको जाना है, कहीं उधर जाना है, कहीं उधर जाना है, समय नहीं उनको मिलता। किंतु विचारो, सोचो किस काम में आएगा वो, मरने के समय में वो समाज का वो सब काम किया हुआ आएगा न, किस काम में आएगा। इसलिए एक आदमी भी, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, यदि एक आदमी को भी मैं भजन करा सकूं तो ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है, मैं खुद भजन कर सकूं करा सकूं। उन्होंने बच्चों से कहा, देखो वो लोग दयालु नहीं है जो खुद घर में रह करके भजन कर रहे हैं, उनको मैं दयालु नहीं मानता, वो तो केवल अपना उपकार कर लेते हैं, बड़े भारी स्वार्थी हैं। जो लोग खुद भजन करते हैं, हजारों लोगों को भजन कराते हैं, इसके समान और कोई दुविधा व्यक्ति नहीं है, वो विश्व ब्रह्मांड में सबसे बड़े दयालु, सबसे बड़े दानी और सबसे कर्तव्य परायण हैं। और जो भगवान का भजन नहीं करते और संसार के इन कामों को ही महत्व दे करके इसमें अपने जीवन की सब इति कर्तव्यता मान लेते हैं, वो अंत में पछताते हैं। जब तुम जम के तुम पकड़ेंगे धरेंगे ना, ये तूने क्या किया ये शरीर लेकर के, संसार में हमने मनुष्य शरीर किया, सबल स्वस्थ बुद्धि मत्ता किया, तूने क्या किया। तो हमने एक अस्पताल बनाया, उस अस्पताल में क्या हुआ, व्यभिचारिया भी उसमें आई, अनिति से गर्भ धारण करने वाली, उनकी चिकित्सा हमने हजारों की करवाई, और क्या किया। उसमें बड़े बड़े दुष्ट बदमाश भी आए, उनकी भी चिकित्सा की, तो तुमको तो बहुत बड़ा पुण्य हुआ ना। पुण्य हुआ में क्या हुआ, जिसको भी आप कर रहे हैं वो डॉक्टर लोग ही चोरी करके सब दवाएं बेच देते हैं, और जिनको अच्छी से चिकित्सा नहीं की जाती है उन गरीबों की नहीं देख, इसका पाप किस पर लगेगा, वो अस्पताल को बनाने वाले पर लगेगा ना कि किस पर लगेगा, जिन स्कूलों में भगवान के भजन की शिक्षा, आत्मा की शिक्षा नहीं दी जाती, ऐसे कोटि कोटि अस्पतालों को करने की कि क्या आवश्यकता है। यदि हाँ, यदि इसमें आत्म सुधार, यदि भगवान का भजन करने वाला एक व्यक्ति भी उन स्कूलों से निकला, हम समझेंगे कि वो स्कूल अस्पताल और ये सब चीजें कर्तव्य ठीक है, और नहीं तो भगवत भजन नहीं हुआ, और सब कर्तव्य कर लिया तो कुछ भी नहीं हुआ, और यदि भगवत भजन एक व्यक्ति ने किया और कुछ भी नहीं किया था उसका जीवन यथार्थ में सार्थक। हमारे संस्कृति को लीजिए ऊपर से लेकर के आज तक सब यही है, इसलिए भगवान का भजन करना ही हमारा मूल कर्तव्य है। उसको ठीक रख करके और सब करेंगे, वो भगवान का भजन करने का है एक, और बाकी सब काम है जीरो। एक को रख करके जीरो रखो तो दस गुना मान बढ़ता जाएगा, दस हजार, दस लाख, करोड़, अरब खरब बढ़ता जाए। एक को हटा करके लाख जीरो रखो उसका कोई मान नहीं। क्या है?
राम नाम।
राम नाम को अंक है, मैंने एक है, राम नाम को अंक है, सबसा धन है तू, अंक गए किछु हाथ नहीं अंक रहे। तुलसीदास ने भी मीरा जी को यही कहा, जिनके प्रिय न राम वेदे सजी कूटि बैरी समझत देप परम सजे। हमारे श्रीमद् भागवत में यही कहा गया, जिनको भगवान की कथा में रुचि नहीं है उनका जीवन व्यर्थ है। इस तरह से विचार करके आप लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करने की चेष्टा करेंगे। समय नहीं है इसलिए मैंने संक्षेप में ये बतलाया। उन्होंने बतलाया यदि भजन करना है तो गुरु सुश्रूषण, गुरु की सुश्रूषा करो। गुरु ही नहीं है, एक आदमी से मैंने देख वो भजन कर रहा है, मैंने पूछा ये तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, तो मैं गुरु हमारे है ही नहीं है, तो कैसे भजन करता है, तो अपने आप भजन करते हैं, उसमें दलाल की क्या जरूरत है। तो ये ऐसे नहीं, अरे हारमोनियम का बाजा सीखते हो, कोई चीज पढ़ते हो तो गुरु की जरूरत होती है, शिक्षक की जरूरत होती है, और इस प्रभु का भजन करेंगे गुरु की कोई जरूरत नहीं। भाई ऐसा यदि गुरु नहीं होगा तो उसकी सुश्रूषा नहीं होगी, तो भजन की शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। भक्ति किसे कहते हैं समझ नहीं सकेगा, इसलिए ऐसे एक्सपर्ट की जरूरत है जो कि हमको इस विषय में हमको ठीक ठीक ज्ञान दे, जो भजन किसको कहते हैं, किसका भजन करना चाहिए, क्यों भजन करना चाहिए, किस तरीके से भजन करना चाहिए। ऐसे गुरु की सुश्रूषा करने से ही भजन होगा और भगवान में मति लगेगी और तब हम भगवान का भजन कर सकते हैं। यदि ऐसा संत पुरुष नहीं मिला, ऐसे गुरु जी नहीं मिले तो भगवत भजन नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का सार है। एक और बतला करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। भगवान ने इनसे कहा, प्रहलाद महाराज जी से, तुम वर मांगो, हाथ जोड़ करके निर्भय बालक, उसको कोई डर नहीं, प्रभु से डर नहीं। जो ही सब लोग डर गए, भगवान के समीप नहीं आए उनका क्रोध शांत करने के लिए, तो ब्रह्मा जी के उपदेश से वो बालक जल्दी से आकर का झट उनकी गोदी में चढ़ गया और आगों से लटों से आग निकल गई, शरीर कांप रहा है, उनका क्रोध शांत नहीं, और प्रहलाद महाराज झट उनके गोदी में एकदम बैठ गए, इनका क्रोध शांत हो गया और आंखों से आंसुओं की धारा प्रभु को निकले।
अपने
प्रहलाद हमें क्षमा करो, हमारे आने में विलंब कुछ हो गया, बहुत विलंब हो गया, इसलिए हम अपने कर्तव्य से च्युत हुए हैं, तू हमें क्षमा करो। प्रहलाद को चाटने लगे, प्रहलाद महाराज से निर्भीत होकर के जैसे बैठा था, क्रोध शांत करना था, क्रोध उनका शांत हो गया। प्रहलाद महाराज जी को उन्होंने कहा, जो पर मानो तुम कुछ हमारा दर्शन अमोघ है, ऐसे दर्श नहीं जाएगा मुझे, प्रभु मैं बनिया थोड़े हूं, एक पैसा दिया उसके बदले मसाला ले लिया, ये बनियागिरी है भगवान का भजन। भगवान से कहा जब प्रभो उनका चौपट दबाने लगे, चौपट भगवान की सेवा हो गई। प्रभु आपको एक पैसे का बताशा चढ़ाऊंगा यदि हमारे हमारे एक संतान पैदा हो। ये सब भजन नहीं है, ये बनियागिरी है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने प्रभु मैं बनिया नहीं, आपका भजन इसलिए नहीं किया कि मैं बनियागिरी से आपसे कुछ लाभ कर सकूं, इसलिए आप हमको ये वर दीजिए हमारे वर मांगने की यदि कुछ अभिलाषा हो कामना हो ये सदा के लिए हमारा दूर हो जाए। प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए। वह ऐसा तो भक्त हमने कभी जीवन में पाया नहीं, इतनी दिन हो गए ये यथार्थ में असंभव। कहिए तो भी कुछ मांगो। तो दूसरा उन्होंने कहा हमारे पिताजी ने आपको बड़ा कष्ट दिया उन्होंने, इसलिए आप उनको क्रोधित हैं, आप कृपा करके उनका उद्धार करें। उन्होंने कहा जा रहे जिसके वंश में उत्तम भक्त पैदा होता है उसके 21 पीढ़ी, मध्यम हो तो 14 पीढ़ी, और साधारण भक्त भी हो जो गुरु से दीक्षा लेकर के भगवान का भजन करने लग गया है या लग गई है उसके 7 पीढ़ी तक का बिना भजन किए हुए उनको उद्धार हो जाना चाहिए। प्रभु एवं मस्त ऐसा ही होगा। किंतु जो तुम्हारी ये कथा हमारी कथा जिसको सुनेगा पाएगा उनका सबका नहीं। अंत में वो बड़े प्रसन्न होकर के उनको भगवत भक्ति का वर दिया। भगवत भक्ति माने क्या? समय अवकाश पे भक्ति के संदर्भ हम बतलाएंगे। भक्ति बहुत तरह की होती है। शुद्धा भक्ति है उसके भगवान से कुछ न चाह करके कोई भी कामना वासना न हो, केवल मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण का ही सेवा करना ही ये सबसे उत्तम आव। प्रहलाद महाराज जी को वर दे करके और प्रभु अंतर ध्यान हो गए और प्रहलाद महाराज जी फिर अपने राज्य में सर्वत्र भक्ति का प्रचार करने लगे। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं का ये सार आपको सुना है। आप लोग प्रहलाद महाराज जी के ही अनुसरण करके और भगवान का भजन आज यही सरपंथा राधा रमन हरि गोविंद
भागवत वेद रूपी कल्पलता का प्रपक्व फल है। समस्त शास्त्रों का यह सार गीता में बतलाया गया है। चतुर्विधा भजन्ते मां सुकीर्तनो अर्जुनः जज्ञासु अर्थार्थी च ज्ञानी च भक्त। बतलाया गया है गीता में चार प्रकार से लोग हमारा भजन करते हैं। कौन कौन लोग भजन करते हैं? अर्थ की अत्यंत दुखों से आर्त हो जाए। अब देखे लीजिए, अब दुख कहीं दूर नहीं होने वाला है, असहाय हो जाते हैं, कोई भी छुटकारा का उपाय नहीं है, तो लोग भगवान को स्मरण कर सकते हैं। यदि किसी कामना की कोई कामना हो और इत्यादि और वो कामना किसी से नहीं पूरी हुई, तो प्रभु को भजन करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं कि वो हमारी इस कामना को पूर्ण करते हैं, इसलिए वो भजन करते हैं। और मैं कहां से आया, मैं पहले कहां था, अब मैं फिर मरने के बाद में कहां चला जाऊंगा, ये विश्व कहां से आया, हम सुख शांति के लिए चेष्टा करते हैं किंतु वो आती नहीं, इसको कहते हैं जिज्ञासा। जिसको ऐसी जिज्ञासा हो और वह कहीं नहीं पूरी हुई, तो उसके लिए भगवान का हम भजन कर। और ज्ञानी लोग या संसार अनित्य है ये समझ गए हैं,